ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੁਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਾਤਚੀਤ ਅੱਗੇ ਬਢਾਏਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੋ ਛੋਟਾ ਸਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬ੍ਰੇਕ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਖਬਰੋਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਬਢਾਏਗੇ।
ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਰ 24/7।
ਦਲੇਰ, ਸਿਰੜੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਸ ਅਤੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਾਲ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਰੂਲੀਆ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਪਾਸ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਧੜਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ। ਫੋਨ 416-994-8989, 416-994-8989। ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ।
ਬੜਾ ਦਿਲ, ਉਸੇ ਬੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰ ਉਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸਕਾਨ। ICICI ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ ਔਰ ਏਕ ਸਾਥ 30,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਭੇਜਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਫਰ ਪਾਏ। ਮਨੀ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭਰੋਸੇ ਕਾ। ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਰਪਿਆ ICICIBank.ca ਪਰ ਜਾਏ ਯਾ ਮਨੀ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੇ। ਨਿਯਮ ਵ ਸ਼ਰਤੇ ਲਾਗੂ।
ਸਿੰਮੀ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ।
ਬੇਬੇ ਆ ਗਈ ਸੱਚੀ?
ਹਾਂ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਆ ਗਈ।
ਮਤਲਬ?
ਬੇਬੇ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਖਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ।
ਕਿੱਥੇ?
2700 ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ, ਯੂਨਿਟ 14, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਬਵੇਡ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-458-0995, 905-458-0995।
ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Did you know with CIBC Global Money Transfer, there are many ways to send money abroad? Like next day deposit to a bank account, same day cash pickup, or send it in minutes to eligible Visa cards or an Alipay wallet. The choice is yours with CIBC Global Money Transfer. Plus, enjoy a $0 CIBC transfer fee, always. Visit CIBC.com/transfer. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. CIBC. Ambitions made real.
ਆਹਾ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਰੋਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਮ ਐਡਰੈਸ LED ਸਾਈਨ।
ਕਿਤਾਬ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾ ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਚੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜਬ ਰਾਤ ਉਤਰੇ ਤੋ LED ਸਾਈਨ ਆਪਕੇ ਘਰ ਕੇ ਨਾਮ ਔਰ ਨੰਬਰ ਕੋ ਚਮਕਾ ਦੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਿਏ LED ਸਾਈਨਸ ਕੇ ਲਿਏ ਯੂਨੀਕ ਸਾਈਨਸ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਜੀ 6475274482 6475274482। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਮਤ ਭੁਲੀਏਗਾ।
ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਰਫਬਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨੋ ਪਲੋਰ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ 311 ਐਪ ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ brampton.ca/snow ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।
बड़ा दिल उससे बड़ा ट्रांसफर और उससे भी बड़ी मुस्कान। ICICI बैंक मनी टू इंडिया के द्वारा भारत में ज्यादा पैसे ट्रांसफर करें और एक साथ $30,000 तक भेजने के लिए ऑफर पाएं। मनी टू इंडिया ट्रांसफर भरोसे का। ICICI बैंक कनाडा का प्रोडक्ट। अधिक जानकारी के लिए कृपया ICICIbank.ca पर जाएं या मनी टू इंडिया कनाडा ऐप डाउनलोड करें। नियम व शर्तें लागू।
कीगल जैसी तू बड़ा स्माइल कर रही है।
स्माइल का हूँ करांगी ही, टीथ व्हाइटनिंग जो कराई है।
कितों असि तो आप डेंटल क्लिनिक लब रहे हैं, बच्चों के ब्रेसेस भी लगवाने ने।
तू थोड़ा ही कांटेक्ट कर कंट्री साइड डेंटल क्लिनिक नो, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं न्यू पेशेंट। कंट्री साइड डेंटल क्लिनिक, फैमिली ब्रेसेस कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम। कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर की जाओगी, अपॉइंटमेंट इजिली अवेलेबल है, इंश्योरेंस कंपनी भी डायरेक्टली बिल कर देंगे विद इजी पेमेंट ऑप्शन। डॉक्टर नाजिया रहमान नु हुणे ही कॉल करो ते खुल के करो स्माइल। सर्व कर देने तुहानू दो लोकेशन तो कंट्रीसाइड डेंटल क्लिनिक इन ब्रैम्पटन, एयरपोर्ट रोड एंड सैंडलवुड दी इंटरसेक्शन ते। फोन नंबर है 9054586588, दैट इज 9054586588। एंड दूजी लोकेशन है डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव दी इंटरसेक्शन ते। फोन नंबर है 9058721100, दैट इज 9058721100।
शुरू करें अपना आउटडोर एडवेंचर 2023 ब्रोंको स्पोर्ट में। टेक ऑन एनी ट्रेन विद अप टू 7 अवेलेबल गोट मोड्स। अभी आपको मिल सकता है अप टू $4,000 का रिबेट ऑन ऑल 2023 ब्रोंको स्पोर्ट मॉडल्स। विजिट करें आज ही टोरंटो एरिया फोर्ड डीलर्स या उनकी वेबसाइट fordtoronto.ca और जानकारी के लिए।
Hi, real estate agents. Have you ever dreamt of getting your commission check on the same day you signed your deal? Your dream is now a reality. At SaveMax Real Estate, you get paid as soon as you sign a deal. 0% interest, no worry about cash flow, and no credit check required. Visit SaveMax.com to learn more or call 905-459-7900. Join SaveMax. Sign deal today. Get paid today.
समोसा एंड स्वीट फैक्टरी दी तक गाली कुजोरे तुम्हा पया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 Albion Road in Rexdale 4162131165।
अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर आपका कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का बिजनेस है तो आपके लिए है बड़ी खुशखबरी। कनाडा कॉन्ट्रैक्टर्स पर लगने जा रही है बिग न्यू ईयर सेल 8th to 10th January अप टू 80% ऑफ। ठीक सुना आपने, अप टू 80% ऑफ है ऑन टाइल्स एंड बैकस्प्लैश, टूल्स एंड एक्सेसरीज, श्रूटर सिस्टम, आरिया वेंट, सीमेंट, ग्राउट, ऑल सेटिंग मटेरियल्स, टाइल एजेस और शावर जैम्स, प्लम्बिंग फिक्स्चर्स और सप्लाईज भी। वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन। अब भी कॉल करें कनाडा कॉन्ट्रैक्टर्स को 905-488-4450 पर या फिर विजिट करें 3425 ब्लेड रोड यूनिट 3 मिसिसागा। ये मैसिव सेल अपने हाथ से जाने ना दें, आज ही विजिट करें कनाडा कॉन्ट्रैक्टर्स को।
जी तुसी लग रहे हो अपने लिए जीप रैंगलर या रैम और एनी अदर क्राइसलर दी गड्डी ते पहुंच जाओ तुसी टीम क्राइसलर ते। 500 गाड़ियां अवेलेबल ने ना देखो ला। इमीडिएट डिलीवरी ले फैक्ट्री ऑर्डर ले वेट करन दी हुन लोड नहीं है। हाईवे 401 मेविस इंटरसेक्शन ते टीम क्राइसलर की ऑन यूसुफी दुख। आज ही कॉल करो जनरल मैनेजर टीम क्राइसलर 905-819-0001
दिल्ली केसिस पे जाएं जहां आपको मिलती है अमेजिंग डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पे आपको मिलते हैं बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, जो लार्जली बेस्ड है इंडियन कुजीन, वो भी दिल्ली की गलियों से इंस्पायर्ड। दिल्ली केसिस पे खाना बनता है एकदम फ्रेश फ्रॉम स्क्रैच, ऑथेंटिक इंडियन डिशेस मिलती हैं दैट आर रिच विद फ्लेवर्स, रेयर हर्ब्स एंड एग्जॉटिक स्पाइसेस।
Delicacies, 400 Rutherford opposite Wonderland in front of Vaughan Mills. Call them at 905-760-0000. 9650352 पे, दैट इज 9057600352 पे।
तुसी सुनिया नरेंद्र दा मोटर दा काम किन्ना वधिया चल रहा है ते उन्होंने इन्ना सोना नवा कर लेता है।
तू फिकर क्यों कर दी है, मेरी भी गल हो रही है गुरदीप सिंह ढिलो नाल जिन्हां नूं प्यार नाल मामू भी कहंदे ने। ओ एक्सपर्ट ने रियल स्टेट क्षेत्र दे विच, कोई बिजनेस बाय करना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हो जां फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, इन्हां सारिआं च डील करदे ने।
बाइंग सेलिंग और इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, कॉन्टैक्ट गुरदीप सिंह ढिलो उर्फ मामू फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी 416-450-4900, that is 416-450-4900।
सिर्फ कार्टून्स में ही टाइगर्स की आवाज सुनी है या असली में भी टाइगर को मिलना है? जी हाँ, इंश्योरेंस टाइगर से मिलिए 416-224-2800। आपकी सभी इंश्योरेंस रिलेटेड नीड्स के लिए है इंश्योरेंस टाइगर 416-224-2800।
GTA which one and only 100% pure vegetarian pizza store Mr. Singh's Pizza hun khul chukya hai at 3 locations Torbram and North Park Drive Brampton, Airport Road and Derry Malton, Erin Mills Parkway and Britannia Road Mississauga. Mr. Singh's Pizza open rehnda hai hafte de 7 din from 11 AM to 4 AM। इन्हां दे मेन्यू विच सिर्फ पिज्जा ही नहीं होर भी काफी वैरायटीज हैं, जिवें कि प्लांट टेंडर्स, प्लांट बाइट एंड बफलो कॉलीफ्लावर। जे तुसी वेजिटेरियन या वीगन हो तां देर ना करो, हुने ऑर्डर करो मिस्टर सिंह पिज्जा तो एट 905-500-4000, दैट इज 905-500-4000, सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस इन ब्रांटन एंड मिसिसागा।
You can listen to the headlines anywhere, but we bring you the story behind the headlines by Group Editor and CEO Yudhvir Jaswal, only on South Asian Pulse. Call Yudhvir Jaswal 647-272-8182 or visit SouthAsianDaily.com. South Asian Pulse.
आप सुन रहे रेडियो वाइज साउथ एशियन पर्ल्स का प्राइम अटैम चल रहा है एंड आज वेंसडे मॉर्गेज की बातें होंगी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ कमल भाटी जी जुड़ चुके हैं। कमल जी वेलकम सर, कैसे हैं?
थैंक यू सरा जी, थैंक यू। बिल्कुल मॉर्गेज की बात होगी। बैंक ऑफ कनाडा की आज रेट अनाउंसमेंट आ गई है, जैसा एक्सपेक्टेड था उन्होंने रेट चेंज नहीं किया। पिछले महीने की इन्फ्लेशन फिगर जब जरा हाई आए थे तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि बढ़ेगा तो नहीं, एंड लास्ट वीक भी मैंने क्लियरली कहा था कि बढ़ने की कोई चांस नहीं है, एंड इनफैक्ट अब तो हम ये देख रहे हैं कि रेट कम होना कब से शुरू होंगे। अब कम होना कब से शुरू होंगे वो काफी और कितना कम होंगे डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन कितनी जल्दी एंड कितनी ज्यादा कंट्रोल में आ जाती है। अभी बैंक ऑफ कनाडा एक्सपेक्ट कर रहा है कि फर्स्ट हाफ में इन्फ्लेशन यानी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर इन्फ्लेशन करीब 3% रहेगी एंड बाय 2025 ये 2% तक चली जाएगी। व्हाट डज इट ट्रांसलेट इनटू फॉर मॉर्गेज सीकर्स? पहली बात कि इंटरेस्ट रेट सेकेंड क्वार्टर से कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी अप्रैल या उसके बाद से कम होना शुरू हो जाएंगे। इस साल कितना कम होंगे इट इज एक्सपेक्टेड, अभी तक इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं हुआ है। इट इज एक्सपेक्टेड कि 0.75% से 1% तक 2024 में कम हो सकते हैं और अगले साल अनदर 0.75% या 1% कम हो सकते हैं। तो बाई एंड ऑफ 25 आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 3-3.5%, जो अभी 5% पे है। माई असेसमेंट इज दैट इट विल बी क्लोजर टू 3-3.25%, 3.5% भी नहीं रह जाएगा, उतना कम हो जाएगा। अब ये ट्रेंड आ रहा है। ये ट्रेंड है एंड ये इंडिकेशंस हैं सरा जी, लेकिन इसमें देखने की बात ये है कि जिनकी जिन्होंने से बिल्डर से प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक की हुई थी और उनकी क्लोजिंग आ रही है, तो वो इंटरिम पीरियड में क्या करें? उनके लिए कई रास्ते हैं, उनके लिए रास्ते हैं कि भाई अगर वो अभी के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली क्वालिफाई ई लेंडर से नहीं कर रहे तो सजेशन है कि भाई आप अभी अल्टरनेट लेंडर या बी लेंडर से एक साल के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए ले लीजिए एंड देन जैसे ही रेट कम होंगे से एक साल में अगर 1.25% कम हो जाता है तो आप जो है ना फिर अपनी मॉर्गेज जो है उस तरह ले लो, या रिस्क लो कि भाई ठीक है हम वेरिएबल जो है हम इस तरह मॉर्गेज ले लेते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी है और पिछले दो हफ्तों में मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए ये करके दिया है बिकॉज वो क्वालिफाई हो नहीं रहे थे। आपको सरा जी याद है, लिसनर्स को भी मैं याद करा दूं कि आप जिस रेट पे मॉर्गेज एग्री करते हो आपका क्वालिफाइंग रेट उससे 2% एक्स्ट्रा होता है, यानी मान लीजिए आपने 5.5% पे मॉर्गेज एग्री किया विद एनी लेंडर लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन 7.5% पे आएगी। ये 2018 में शुरू हुआ था, वो जो स्ट्रेस टेस्ट के नाम पे लोग इसे ज्यादा जानते हैं। तो इस वक्त अगर आपको क्वालिफिकेशन आराम से नहीं हो रही तो ए लेंडर के बजाय शॉर्ट पीरियड के लिए बी लेंडर के पास चले जाएं, या जो है आप गलत कागज, आपको बहुत लोग टेम्प्ट कर सकते हैं कि गलत कागज बना लो हम मॉर्गेज ले देंगे, वो आप पहली बात वो फाइनेंशियल फ्रॉड है, मैं उसे एनकरेज नहीं करता, इनफैक्ट मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूं कि अगर आप कभी फंस गए तो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए सीधा किंगस्टन जेल है। मैं नहीं कह रहा कि सब फंसेंगे या कितने लोग फंसेंगे लेकिन उसे अवॉइड करें। अब उसे अवॉइड करने के लिए अगर शुरू में आपको साल के लिए थोड़ी महंगी मॉर्गेज लेनी भी पड़ती है तो उसे ले लें ताकि आप जो है ना आपके गए हुए डॉक्यूमेंट बैंक में जेन्युइन एंड प्रॉपर होंगे। सरा जी मुझे पता है कि कुछ लोग गलत डॉक्यूमेंट देके मॉर्गेज ली, वो फिर उस लेंडर के पास फंसे पड़े हैं बिकॉज उनको अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अक्सर उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से या किस इनकम बना के लोगों ने उनके नाम पे डॉक्यूमेंट डाले हुए, तो इससे जरा सा परहेज कर लें। सो जब आप इस टाइम पे जा रहे होते हैं तो मैं सारे अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि अगर मॉर्गेज मिलने में मुश्किल है तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 0.25% कम होगा या ज्यादा होगा साल भर के लिए, उस पे ध्यान ना दें, अच्छी टर्म्स पे एंड मॉर्गेज आपको मिल जाए उसके ऊपर जरा ज्यादा काम करें। सरा जी जो नया मकान ले रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, अगर इस वक्त उन्हें छोटा मकान भी लेना पड़ता है, अपने मकान में जा सकते हैं तो चले जाएं। और ये मैं पहले कई बार कह चुका हूं, आज इसे दोबारा कह रहा हूं कि पहला मकान जरूरत से, अगला मकान चाहत से। आपकी चाहते क्या है, क्या लेना चाहते कुछ, वो अभी ध्यान ना दो, अभी क्या करो, अभी भाई जैसा भी है, क्योंकि मकान लेके मॉर्गेज देना शुरू करो, क्योंकि मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, जो रेंट दे रहे हो वो तो टोटल एक्सपेंस है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हैं। ये भी मैं बता दूं कि भाई बाय सेंसिबली, डोंट ओवर रीच एंड कीप रिजर्व्स। हालांकि जैसे एम्प्लॉयमेंट मार्केट थोड़ी सी स्लो हो गई है तो आप एम्प्लॉयमेंट मार्केट, आप अपने आप को मॉर्गेज की पेमेंट के हिसाब से रिजर्व रखें कि बाय चांस आपके साथ आपकी इनकम में या जॉब चली जाए या आपकी इनकम में थोड़ी सी कमी आ जाए तो आपको मॉर्गेज का डिफॉल्ट आने का चांस न पड़े, तो वो थोड़ा रिजर्व रख के चलिए। और वो रिजर्व किस तरह रखा जा सकता है, जब आपकी क्वालिफाइंग हो रहे हो, मान ली क्वालिफाइंग इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपकी 1500 बन रही है, आई एम जस्ट थ्रोइंग अ फिगर, लेकिन एक्चुअल आपकी 1300 बनती या 1200 बनती, तो वो थोड़ा अमाउंट एक्स्ट्रा रख ले, उसे जो है ना खर्च ना कर दें, ये समझ लीजिए कि क्वालिफाइंग अमाउंट के हिसाब से आपने मॉर्गेज अलग रखनी है, देना आपने एक्चुअल अमाउंट है बैंक को। सो ये सारी चीजें हैं, ये कोई भी अच्छा मॉर्गेज प्रोफेशनल आपको गाइड कर सकता है, जिसे ज्यादा पता करना है, ज्यादा बात करनी है, जिसकी मॉर्गेज आ रही है चाहे रिन्यूअल के लिए या नए प्रॉपर्टी के लिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड देम। बिकॉज एक चीज आप जान के रखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप डायरेक्ट लेंडर से कॉन्टेक्ट करते हैं तो लेंडर कैन ओनली गिव यू हिज प्रोडक्ट्स, उनके पास जो 2-3-4 किस्म की मॉर्गेज है। मॉर्गेज प्रोफेशनल्स आर लाइक द होल मॉल, हम जो है ना 100 लेंडर से घूम घाम के खोज के आपके लिए बेस्ट, आपके लिए बेहतर जो मॉर्गेज है हम वो लाके आपको दे सकते हैं। तो इसीलिए टॉक टू मी, जिसकी रिन्यूअल आ रही है, जिसकी नई प्रॉपर्टी की फर्स्ट टाइम क्लोज कर रहे हैं एंड जिसकी रीसेल में जिन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है। मॉर्गेज में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, सो फील फ्री टू टॉक टू मी। मेरा ये कमिटमेंट है टू ऑल द क्लाइंट्स और एनीवन हु फोन्स मी कि मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो उनकी बेहतरी में, उनके हाईएस्ट इंटरेस्ट में हो। सरा जी
बिल्कुल, कमल भाटिया जी, एंड यू नो एनीथिंग एल्स सर यू वांट टू ऐड रिगार्डिंग दिस प्लीज गो अहेड, एक दफा कॉन्टेक्ट डिटेल्स जरूर शेयर करें प्लीज।
हाँ जी, मेरा नंबर है 416-564-6267, दैट इज 416-564-6267। एंड लोग आपको जो कहता है बगैर आपकी इनकम समझी होगी, हाँ हो जाएगा करवा देंगे, जरा बचें। कोई भी कमिटमेंट करने के पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा लें कि आपकी इनकम के हिसाब से ए लेंडर से कितनी मिल जाएगी, बी लेंडर से कितनी मिल जाएगी। जब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा लेते हैं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि प्रॉपर्टी लेते वक्त आपको इतनी मॉर्गेज इस इनकम में मिलेगी, आप उसी हिसाब से अपने अगले स्टेप्स लेते हैं। सो वंस अगेन, परेशान ना हो, मायूस ना हो, सिस्टमेटिकली चलें, डॉक्यूमेंट तैयार रखें, बिकॉज मॉर्गेज इज ऑल अबाउट प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लानिंग। एंड मॉर्गेज प्रोफेशनल से ऐसे मैं हूँ बात करें, वील बी एबल टू गाइड यू इन योर हाइएस्ट इंटरेस्ट। सरा जी
थैंक यू सो मच, कमल भाटिया जी इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, इतने सारे नॉलेज, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं हमारे लिसनर्स के साथ, रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, वी विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू एंड थैंक यू आपको, आपकी टीम को एंड सभी लिसनर्स को, मुस्कुराते हुए थैंक यू एंड विशिंग एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच कमल भाटिया जी, टेक केयर। एंड हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और भी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ बख्शी जी भी जुड़े हुए हैं। जी बख्शी जी प्लीज गो अहेड।
जी बिल्कुल जी, आप बात कर रहे हैं पंजाब की, गल करांगे फिलहाल की कड़ी है जी, तो गल करांगे बीजेपी पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ की, जिन्होंने सीएम मान घेरिया वक्त वक्त मुद्दे से कई सवाल जड़े ने उन्होंने चुके ने। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने गलबात के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने अंबिका सोनी और हरीश चौधरी को अयोध्या ना जाने की राय दी है। जाखड़ ने इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े गैंग ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਖਿਰੂ ਖਿਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਵਾ ਖਿਰੂ ਖਿਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਿਓ ਖੰਡ ਨੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੇਕਰ 13-0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਚ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਾਲ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਕਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸੈਲਫੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਬੇਟੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੱਡਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਈ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 92 ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਗਡਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਪਵੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ 200 ਰੋਪਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਵਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਰੋਪਵੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਧਾਉਣ ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਪਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਪਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਰੋਪਵੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਹਾਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਪੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਿਮਾਂਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, 25 ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰੋ ਬਹੁਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਗੇ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਲਾਸਟ ਜੋ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਬਚਾ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਕ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਪੰਕਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਅਗਰ ਹਮਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪੰਕਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਸੇ, ਆਪ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਪੇ 416-620-1778 ਪੇ, 416-620-1778 ਪੇ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਕਾਲ ਕੀਜੀਏ ਐਂਡ ਪੰਕਜ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ?
ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਭ ਕੋ ਗੁਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਚਿਲੀ ਵੈਦਰ ਐਂਡ ਵੈਦਰ
ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਫੋਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰਾਈਟ,
ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰ ਯੂ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦਿਸ ਵੈਦਰ ਦੋ ਪੰਕਜ ਜੀ?
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਦਰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੁਝੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਗਰਮ ਵੈਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲੋਮੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਜਹਾਂ ਧੂਪ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਠੰਡ ਠੰਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਧੂਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਿਲ ਆਈ ਇੰਜੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਨ ਕੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ
ਵੋ ਸਭੀ ਪੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਪੈਕਟ। ਵੈਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹਮ ਥੋੜਾ ਸਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜੋ ਕਮ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਵੈਦਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸਡ। And Pankaj ji, there are so many things to talk about today. Like, in first of all, aapke services and contact details se start karte hain. Your services and contact details, please go ahead.
Jaroor, Sarah ji, basically, mere khayal bahut log jante hain, but agar koi naya sun raha hai mujhe, to main ek certified financial planner hoon, TFP jise kehte hain. So, I have TFP designation, uske baad main chartered life underwriter designation hai, mere paas main certified health insurance specialist bhi hun. So ye meri jo studies hai, meri education hai, wo ye hai, main ek financial planner hun. Aur financial planner basically har field mein kaam kar sakta hai aapke financial, chahe insurance ek part hota hai financial planning ka, investment dusra part hota hai financial planning ka, jaise aap market mein invest karte hain, kisi tarah ke bhi accounts ko aap utha sakte hain, jaise RRSP bhi hota hai, bachchon ki education plan hote hain, aapka tax free saving account hai, aajkal first time home buyer ke liye bhi saving plan aa gaya hai, wo bhi ek account hai, ya waise hi agar aap नॉन रजिस्टर्ड जिसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट जैसे आपके होते हैं उनको भी हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक पार्ट होता है, स्टेट प्लानिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इसमें, रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इस सिचुएशन में, और अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हम टैक्सेस एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, ये सारा काम एक फाइनेंशियल प्लानर करता है। सो बेसिकली सर अभी देखा जाए तो बड़ा ही ब्रॉड एरिया है, अगर आप इसको देखें तो इंश्योरेंस से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके स्टेट प्लानिंग से लेके मैं रेपिटेटिव काउंट कर रहा हूँ, बट किसी तरह की भी इस तरह की सर्विस आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे लेट्स से कि आपके पास ट्रांसपोर्ट कंपनी है सरा जी, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का आपको पहली चीज तो ये देखनी होती है कि आपके जो ड्राइवर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं है। जब आप वो अगर उनकी कोई इंजरी हो जाए तो उनको मंथली इनकम कहां से आएगी, अगर वो लेट्स से कि प्रोविंस से बाहर है, लेट्स से यूएस गए हुए हैं, क्वेबेक गए हुए हैं, वहां पे उनको कुछ बीमारी हो जाए तो वो कवरेज कैसे होगी, उनका वो खर्चा कहां से आएगा, ये सारी चीजें देखनी है। दूसरी चीज, कोई भी तरह की कॉरपोरेशन है, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो नॉर्मल कॉरपोरेशन है, उनको ये देखना पड़ता है कि उनके पास जो फंडिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, किस तरह से वो अपने पूरा मैनेज करें अपने डे टू डे थिंग्स को, कैसे वो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कॉरपोरेशन में मनी तो आ गई है, अब आपने जो सैलरी वैलरी सब ले ली है, फिर भी वो पड़ी रह जाती है बहुत बहुत सारे केसेस में, अब उसको निकालेंगे तो टैक्स लगेगा, तो उसको कैसे हम यूज करें बिना टैक्स, अब टैक्स की एडवांटेज लेते हुए बेसिकली, सो ताकि टैक्स भी ना कि पे करना पड़े उस पर, तो उसको यूज करने का तरीका ये आपको एक फाइनेंशियल प्लानर ही बता सकता है, चाहे किसी भी तरह की कॉरपोरेशन। जी सारा जी,
बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन करी है पंकज जी, रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि आपने सही कहा फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत ही ब्रॉडर एक टर्म पे होती है, एंड क्योंकि लोगों के रिक्वायरमेंट्स भी अलग होते हैं, सिचुएशन जो होता है फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमी जो होती है एक कंट्री की एक जगह की, वो भी उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड पंकज जी, स्टार्टिंग टुडे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आई है, दैट इज इंटरेस्ट रेट। बैंक ऑफ कैनेडा ने इंटरेस्ट रेट स्टिक किया है, इंटरेस्ट रेट 5% पे, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पे आपका क्या टेक है, कोई हाइक, कैन वी एक्सपेक्ट सम हाइक लेटर ऑन या फिर ये स्टिक ही करेंगे एट द स्टेज?
एक्चुअली दिख तो यही रहा है कि दे विल स्टिक इट आउट बेसिकली, बिकॉज 5% जो हम बात कर रहे हैं वो 5% हम ओवरनाइट लेंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्राइम होता है वो उससे ज्यादा होता है, सो 5% अगर ओवरनाइट है तो हमारा प्राइम 7% है, बेसिकली 2% के ऊपर चलते हैं। सो आजकल जो हमारा प्राइम रेट चल रहा है वो 7.20 चल रहा है, तो उस तरह से ये होता है। तो हमारे साथ होता क्या है, हेडलाइन जो आती है नॉर्मली ओवरनाइट लैंडिंग की आती है, 5% है 5% है, लेकिन 5% हमारा प्राइम नहीं है, तो जैसे युद्धवीर जी बात करते हैं ना, स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइन, स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइन ये है कि प्राइम रेट अलग है, जो हम आज लोन लेने जाएंगे कहीं भी बैंक के साथ तो वो प्राइम रेट पे मिलेगा, हमें ओवरनाइट लैंडिंग पे नहीं मिलेगा। ओवरनाइट लैंडिंग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर मैं इस पे बात करता हूँ। ओवरनाइट लैंडिंग रेट का मतलब ये होता है जो बैंक आपस में यूज करती है, लेट्स से कि अब किसी भी मैं ऐसी नाम ले लेता हूँ, हमारा रॉयल बैंक कैनेडा जो है उसको अब मनी चाहिए, तो वो जब बैंक ऑफ कैनेडा से लोन लेगा तो उसको ये रेट पड़ेगा 5%, ये आपका रेट नहीं है इंडिविजुअल पर्सन का, ये बैंक का रेट है। तो बैंक ने जब बोरो की मनी तो वो 5% दे रहा है बैंक ऑफ कैनेडा को, अब वो 5% तो खुद ही दे रहा है, तो आपसे तो कुछ कमाएगा ना जब आपको लोन देगा, तो आपको वो उससे ऊपर का रेट देगा, चाहे वो मॉर्गेज दे रहा है या जो भी दे रहा है, तो वो ऊपर का रेट देगा। सो ये ओवरनाइट लैंडिंग है। सो बेसिकली बैंक ऑफ कैनेडा की जो आज अनाउंसमेंट थी उसमें उन्होंने उसी को रखा है, विच वॉज एक्सपेक्टेड सारा जी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ गया है, या ठीक है ग्रोथ हमारी रुकती जा रही है, इकोनॉमी हमारी स्टॉल होती जा रही है, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन बड़ा स्टिकी पॉइंट बनी हुई है, तो इस वजह से अभी उन्होंने उतना ही रखा है। मैं उनकी सारी बैंक ऑफ कैनेडा के गवर्नर की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी देख रहा था, उनकी पूरी स्टेटमेंट सुनी मैंने, सो उसमें सरा जी एक्सप्लेन उन्होंने ये किया है कि देखिए हमारी जो उनकी अपनी डेलिब्रेशन होती है, जब वो गवर्निंग बॉडी जो है हमारी बैंक की वो बैठती है जब, सो वो डेलिब्रेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ये रेट की अनाउंसमेंट करते हैं, और जो डेलिब्रेशन हुई है जो उनकी डिस्कशन हुई है वो 2 वीक बाद आती है नॉर्मली, उनकी पूरी जो क्या उन्होंने डिस्कस किया था कैसे किया था वो 2 वीक बाद निकलता है, लेकिन आज उन्होंने बहुत सारा जैसे जिस्ट जिससे बोलते हैं ना वो उन्होंने दे दिया हमें इसमें। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमारा अब ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं हम जहां पे सप्लाई एंड डिमांड ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी है, लेकिन अंडरलाइन जो इश्यूज हैं बाहर के, हमारे कनाडा के नहीं बाहर के, जैसे ये यूएई साइड पे या वो जो ब्लैक सी की प्रॉब्लम चल रही है या जो वॉर चल रही है उनकी वजह से कहीं से भी अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ती है तो दे आर सेइंग वी आर रेडी टू इंक्रीज द रेट. हम सारे ये सोचते हैं कि नीचे आने वाली सिचुएशन है नीचे आने वाली सिचुएशन है, उनकी वर्डिंग कुछ और हो जाती है. तो कह रहे हैं वी कैन वी माइट हैव टू इंक्रीज द रेट, बट अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. और जो हमारी डेलिब्रेशन हो रही है, पहले जो हो रही थी पिछले साल तक जो हम डिस्कशन करते थे कि हमें कितना और ऊपर लेके जाना चाहिए, क्या हम अभी सही जगह पे खड़े हैं या हमें कहीं और ऊपर जाना चाहिए, वो चीजें वो डिस्कशन खत्म हो गई है. हमारी बैंक ऑफ कनाडा कह रहे थे गवर्नर बोल रहे थे हमारी जो गवर्निंग बॉडी जो अब डिस्कशन ये कर रही है कि हम कितने देर तक इसको यहां रखें, क्योंकि और कितना आगे रखना है हमें, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है अभी भी है वो बड़ा स्टिकी पॉइंट बना हुआ है हमारे लिए. अब क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, सो सरा जी क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप घटाएंगे कब
जी,
ये तो मेजर चीज है ना हमारे लिए आप घटाएंगे कब ये चीज हम इंटरेस्ट रेट. तो उन्होंने बोला ये प्री मेच्योर है, अभी ये डिस्कशन भी प्री मेच्योर, हम इस पे डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं हमारी गवर्निंग बॉडी कि हम घटाएंगे कब. अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कितना लंबा और रखना है या ऊपर जाना ना पड़े. सो अब मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च में ही कम हो जाएगा जी, जो बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, मैं नहीं हूं उसमें, मैं तो इस पिछले वेंसडे उससे पिछले वेंसडे उससे पिछले वेंसडे थे, आप कोई भी वेंसडे निकाल लीजिए, मैं अभी तक उसी पे स्टिक करके बैठा हूं कि जून जुलाई से पहले इंटरेस्ट रेट घटने वाले नहीं है, और आज भी मैं वही बोल रहा हूं कि नहीं घटने वाले उससे पहले. लेकिन जो मार्च में जो कह रहे थे लोग, उनके लिए बहुत बड़ी एक शॉक होगा आज, जो जिस तरह से बैंक ऑफ कनाडा के हेड ने बोला कि नहीं हम अभी सोच भी नहीं रहे, और अगली मीटिंग तो मार्च की है, इसके बाद अगली अनाउंसमेंट तो मार्च में ही है, जब वो सोच ही नहीं रहे हैं तो मार्च में घटेंगे कैसे. तो वो बड़ी एक सिचुएशन खड़ी हुई पड़ी है. सो लेट्स सी होता क्या है. बट सरा जी हमारी जिस तरह से इस वक्त इन्फ्लेशन है, और मेजर चीज क्या है, वो ये बता रहे थे कि हम कोर इन्फ्लेशन को ज्यादा देख रहे हैं, हम मेन इन्फ्लेशन को नहीं देख रहे. मेन जो हेडलाइंस आती है ना सरा जी, वो मेन इन्फ्लेशन की आती है, कोर इन्फ्लेशन की हेडलाइंस बीच में न्यूज के अंदर होती है कोर इन्फ्लेशन. सो कोर और मेन में फर्क क्या होता है. मेन में तो सारी आइटम्स होती हैं, जितनी भी इन्फ्लेशन के लिए हम काउंट करते हैं 800+ आइटम्स हैं सरा जी, जिनको जिनके प्राइस को देखा जाता है कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, उनकी एवरेज निकाल के हम मेन इन्फ्लेशन दे देते हैं. जब कोर इन्फ्लेशन की बात आती है, कोर इन्फ्लेशन से दो चीजें निकाल दी जाती हैं सिर्फ, वो है एनर्जी एंड फूड, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत वॉलेटाइल है. सो फूड और एनर्जी को अगर हम बाहर कर दें, क्योंकि एनर्जी मतलब गैस की बात कर रहे हैं हम, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, फूड का प्राइस देखिए कैसे अभी भी 5% की इन्फ्लेशन चल रही है फूड प्राइसेस. सो फूड और एनर्जी को अगर हम बाहर कर दें तो उसको फिर बाकी जो रह जाती है वो कोर इन्फ्लेशन रह जाती है. बैंक ऑफ कनाडा या किसी भी कंट्री का बैंक जो होता है, जब इंटरेस्ट रेट की बात आती है सो वो इन्फ्लेशन को देखता है, कोर इन्फ्लेशन को. सो कोर इन्फ्लेशन भी हमारी 3.4% चल रही है, विच इज रियली हाई. तो और कोर इन्फ्लेशन, मजेदार बात क्या है सरा जी, हमारी जो मेन इन्फ्लेशन है वो कई बार नीचे आई है, जैसे दिसंबर की सॉरी नवंबर की जो इन्फ्लेशन थी वो 3.1 थी जो मेन इन्फ्लेशन थी, लेकिन अगर नवंबर की हम कोर इन्फ्लेशन उठा लें तो वो 3.54 थी, वो मतलब 3.5% से भी ज्यादा, 3.5% ही लगा लीजिए 3.54. सो वो इतनी ज्यादा है और वो वहीं पे स्टिक की हुई है. देखिए मैं अगर 2003 के स्टार्टिंग से भी शुरू कर दूं, जनवरी 2003 4.95 थी हमारी कोर इन्फ्लेशन. सो आप सोच सकते हैं हमारी कोर इन्फ्लेशन वहां से अभी तक भी 3.5 तक ही पहुंच पाई है, और जो हमारी जो मेन इन्फ्लेशन थी वो तो बीच में जून में 2.8 भी चली गई थी. कैन यू इमेजिन. सो हम मेन इन्फ्लेशन के नंबर देख के खुश हो जाते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा. नो, वो कोर इन्फ्लेशन देख रहा है. सो इसलिए हम अभी ये ना सोचें कि मार्च में घट जाएंगे, क्योंकि मार्च तो नेक्स्ट मीटिंग मार्च में है. सो हम मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसी नहीं है। रिपोर्ट बेस पे चीजें चलती हैं, मैं भी उनको सुनता हूँ, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, उसी बेस पे बात कर रहा हूँ। और मेरी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जून या जुलाई से कट होना, वो 0.25 वहां से घटाना शुरू करेंगे और 3 बार घटने की उम्मीद है, मैक्सिमम 4 बार घटने की उम्मीद है 25-25 करके इस साल के अंदर में, लेकिन जून जुलाई से पहले मुझे दिख नहीं रहा। जी सर,
बिल्कुल पंकज जी, एंड यू नो टॉकिंग अबाउट दिस, अगर हम इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यू नो वी हैव बीन यू नो सीइंग दैट अफोर्डेबिलिटी जो है वो काफी आगे तक जा रही है, साथ ही साथ हाई इंटरेस्ट रेट्स जो है, स्टैटिस्टिकन की रिपोर्ट भी आई थी जो कनाडा की वेल्थ गैप है यू नो बिटवीन द लोअर इनकम गैप्स एंड द अपर, उसके भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ओवरऑल वो बहुत ज्यादा इंपेरेटिव हो गई, बहुत ज्यादा सोच में लोग पड़ गए कि इस चीज को किस तरीके से किया जाए सो दैट दे कैन एक्चुअली लिव द लाइफ दैट दे वॉन्ट एंड थोड़ा सेविंग्स भी हो सके, जो पे चेक टू पे चेक आ रहा है यू नो प्रॉपरली वो लोग मैनेज आउट कर सके जो जितने खर्चे हो रहे हैं। तो योर टेक ऑन दिस पंकज जी, आप तो क्या सजेस्ट करेंगे राइट नाउ जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, विच डायरेक्शन नो शुड द पीपल गो इन राइट नाउ, प्लीज गो इट।
शाह जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं अगर पता नहीं, इतना तो आपके पास टाइम ही नहीं है, सिर्फ 10 मिनट आए रेडियो शो के, मैं इसको एक घंटा भी लगा सकता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग पे,
कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे।
फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ क्या होता है, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, CFP। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, हम सबसे पहले जब एक मैं आम आदमी के साथ, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, आम आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, वो डॉक्टर है, फिर लॉयर है, अकाउंटेंट है, या बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन चलाते हैं, मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ। एक पर्सन के साथ जब हम बैठते हैं, सबसे पहले जो फाइनेंशियल प्लानिंग, जो मेरे साथ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बैठना चाहते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का ना हमारा एक सर्टन चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं हमारे लिए। वो जरूरी क्या चीजें हैं सर जी, एक मैं आपको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा, आज लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, सबसे ज्यादा मेरी एड ही उसी पे चलती है, सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है आपकी लाइफ में। लोग कहते हैं मेरे बच्चे हैं, मेरा पैसा है, मैंने जो आज तक कमाया है वो है, मैंने जो ये बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया है, ये वो कर दिया है, इतना बिलियन मिलियन जो भी कमा लिया है, वो सबसे कीमती चीज नहीं सर। कीमती चीज ये है जब आप सुबह आपकी आंख खुलती है बेड पे, आप बेड से अपने आप उठ के एक पानी का गिलास उठा के अपने आप भर के उसको पी सकते हैं, ये सबसे कीमती चीज है। आपकी जो बॉडी है, जो आप जो जिसके साथ चल रहे हो, इमेजिन आप सुबह उठ नहीं सकते अपने बेड से, आपको उठाने के लिए किसी को चाहिए, जो भी इस तरह की चीजें मैं बोलना नहीं चाहूंगा, जो भी होता है, लेकिन ये सबसे कीमती चीज है। हम उठ सकते हैं अपने आप काम कर सकते हैं, अपनी टांगों पे चल के जा सकते हैं, अपने हाथों से काम कर सकते हैं, ये जितना कुछ आपने बनाया है जिंदगी इसीलिए बनाया है, इसीलिए वो कीमती आप कह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी टांगों पे चल पा रहे हैं, हाथ चला पा रहे हैं, दिमाग चला पा रहे हैं, आंखें देख पा रही हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। सो जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है अनकंट्रोलेबल इवेंट्स को कवर करना। आज आपको इंजरी हो गई, आप उठ नहीं पा रहे, उस केस में क्या होगा, आप आज बीमार हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, उस केस में क्या होगा, आप नहीं हैं, आपको मैं पिक्चर से बाहर निकाल देता हूं, उस केस में क्या होगा। सो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट होता है। ये नहीं होता जी मकान बना लेते हैं, लोग यहां पे आते हैं सर जी, मैं देखता हूं जो बेचारे नए नए इमिग्रेंट आते हैं उनके पास बच्चे, जैसे एक दो बच्चे हैं या कुछ है, लोग पीछे बढ़ जाते हैं उनके, RESP करा लो जी सबसे पहले, उनके पास अभी वो बेसमेंट में रहते हैं, उन्होंने अभी मकान नहीं बना, उनकी जॉब शुरू नहीं हुई, उनका ढंग से अभी खर्चा नहीं चलता, RESP ले लो जी। अब बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना शुरू करो, अब बच्चों की एजुकेशन उस वक्त ज्यादा जरूरी है या बच्चों के ऊपर छत देना ज्यादा जरूरी है, अभी तो बच्चे 5 साल के हैं, वो एजुकेशन के लिए कब के लिए जोड़ रहे हो आप, यूनिवर्सिटी के लिए जोड़ रहे हो, उनके लिए घर बनाना जरूरी है ये लेना जरूरी है। वैसे ये चीजें चलो मैं कुछ मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा इसमें डीप में इन चीजों में। आपको एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ इसलिए बैठना जरूरी हो जाता है कि ये चीज है। सो आपको डिसेबिलिटी के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको आप नहीं है जैसे लाइफ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन चाहिए। तीसरी चीज मैं नहीं बनाता हूं वो, लेकिन मैं सबसे जरूरी चीज फाइनेंशियल प्लानिंग की आपकी विल है, आपका लॉयर बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का वो बहुत बड़ा पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट आपको जरूरी है वो विल बनानी कि कैसे चीजें चलेंगी। हम उन कंट्री से आए हैं जहां पे शायद जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारी फैमिली इकट्ठी बैठी हुई है, पेरेंट्स भी हैं, चलो जी मैं गया तो बच्चे संभल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कपड़े आ जाएंगे, खाना मिलता रहेगा, घर अपना है, घर की कोई चिंता नहीं है, सारी चीजें वहां पे बहुत अलग तरीके से चलती है। जब हम इस कंट्री में हैं कुछ भी नहीं है उस टाइप का, तो हमें विल इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है कि सबसे बड़ी जरूरत पता है विल की कहां पे, सबसे नहीं सारी चीजों के लिए जरूरी है, बस बच्चे कहां आएंगे। आपको ये भी डिसाइड करना है कि बच्चों का गार्डियन कौन होगा, बच्चों का ट्रस्टी कौन होगा, कहां पे छोटी एज है, किसके साथ रहेंगे। हो सकता है आपने विल नहीं बनाई है, गवर्नमेंट कुछ, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहां जाएंगे। ठीक है गवर्नमेंट भी रिलेटिव ही ढूंढती है, लेकिन हो सकता है आप उस रिलेटिव के साथ अपने बच्चों को छोड़ना ही ना चाहें, आप किसी और के पास छोड़ना चाहें बच्चों को। तो ये सारी चीजें आप विल में लिख सकते हैं। तो विल बहुत जरूरी पार्ट है, देन डिसेबिलिटी जरूरी है, फिर लाइफ को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसके बाद जो हम दूसरी चीज पे आते हैं, ये तो हो गए अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। अब दूसरी चीज जो आती है वो पर्सनल प्रायोरिटीज आती है हमारी। पर्सनल प्रायोरिटीज में क्या होता है, सबसे पहली चीज कैश रिजर्व चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं कैश रिजर्व की, एज ए फाइनेंशियल प्लानिंग में कैश रिजर्व एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। कैश रिजर्व का मतलब क्या है, आज आप पहले जो अनकंट्रोलेबल इवेंट की मैंने बात की है कि काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, जॉब चली गई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, मनी पड़ी हुई है कि आप अगले 6 महीने सरवाइव कर पाए या 1 साल सरवाइव कर पाए बिना किसी इनकम के या कुछ, वो कैश रिजर्व। सो मिनिमम आपके पास आपके 6 महीने का खर्चा पड़ा होना चाहिए साइड में, अगर नहीं है तो उसको बिल्ड करना चाहिए। ये पहली प्रायोरिटी होती है, पर्सनल प्रायोरिटी। अब आते हैं हम हाउसिंग, अब हमें घर चाहिए। ये सारी चीजें कवर होने के बाद हमें अब घर की जरूरत है, पर्सनल अपना घर बनाना है। सो वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट 5वें नंबर पे आ रहा है। सो मैं अगर काउंट करना शुरू कर दूं, ये 5वां नंबर है सरा जी। सो 5वें पे हमने हाउस बनाया है। अब हाउस बनाने के बाद अब अगर हमारे पास कुछ बचा है तो हम कैश रिजर्व भी हो गया, हाउस भी हो गया, अनकंट्रोलेबल इवेंट भी हो गए। अब 6th पार्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग। हमें संभालेगा कौन रिटायरमेंट के वक्त, हमें वो जरूरी है करना। सो हम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या जोड़ें, क्या बनाएं, कैसे करें, ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। उसके बाद 7th नंबर पे सारा जी बच्चों की एजुकेशन आती है जी। हम उसको पहले नंबर पे खरीद करते हैं, फर्स्ट लोग पीछे पड़ के फर्स्ट में करवा देते हैं उसको। ये 7th नंबर पे आता है कि आप अब बच्चों की एजुकेशन के लिए हम सोचना शुरू करें। बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ा है, 15 साल पढ़े हैं, 16 साल पढ़े हैं, 10 साल पढ़े हैं, अब हम उसकी प्लानिंग करना शुरू करेंगे। RESP खरीदेंगे या कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपको RESP नहीं, कई बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हम इस तरह नहीं, हम दूसरी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें हम ज्यादा बना लेंगे। सो वो सारी चीजें जो होती हैं 7th नंबर पे आ जाती है। सो अब हम बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग कर लिए, अब हम जाएंगे उन जगहों पे जहां पे हमने कोई लोन लिए हुए हैं, कुछ किया हुआ है, उनको वापस करना है क्योंकि उनकी कॉस्ट कई बार ज्यादा होती है। आज की रेट में जैसे देखा जाए सारा जी, आज की सिचुएशन देखिए आप, आज मॉर्गेज लेने जाते हैं तो 5% 5.5% पे मिल रहा है, कार लोन लेने जाते हैं तो 8% 9% पे मिल रहा है क्योंकि प्राइम प्लस में चला जाता है, लाइन ऑफ क्रेडिट पड़ी हुई है वो भी किसी की प्राइम पे पड़ी हुई है, किसी की प्राइम प्लस पे पड़ी हुई है। अब जब साथ साथ 8-8% आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या आप उसको जल्दी उतारना नहीं चाहेंगे? यस, वो एक प्रायोरिटी बन जाती है। ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन में। जब इंटरेस्ट रेट 1% थी और आपकी मार्केट में ग्रोथ 8% हो रही है लेट्स से इन्वेस्ट करके, तो हम ये कहते हैं अच्छा ठीक है, लोन को अभी साइड में रखो क्योंकि वो तो 1-2% पे लिया हुआ आपने, हम बाकी जगह से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन अगर मॉर्गेज है, घर है, तो उस केस में अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको उसको उतारने की कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा जल्दी। अगर 2% है तो आप अगर $10 दे रहे थे तो सिर्फ 2% ही जा रहा है, 8% आप अपने $8 जो है आप बेसिकली $10 में से $8 बेसिकली आप अपने इक्विटी में डाल पा रहे, तो आप उसको जल्द 25 साल क्यों रखना है आपको, 30 साल क्यों रखना है आपको अपने ऊपर, उसको मैं अगर 10 साल में खत्म कर पाऊं तो दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी, क्योंकि मेरे सिर्फ एक वो बोझ तो निकल गया, कम से कम मेरी अनकंट्रोलेबल इवेंट्स जो थे उस सिचुएशन में अगर मैं आके खड़ा हो जाऊं तो मेरा घर तो फ्री है, मेरे बच्चों के पास, जैसे हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां से हम आए हैं, हम उन कंट्रीज के तरह उसी तरह हो गए। जिस दिन आपने घर बना लिया, मैं हमेशा ये मेरी लाइन में हर पर्सन को बोलता हूं सारा जी, जिस दिन आपने इस कंट्री में घर बना लिया उस दिन आप इमिग्रेंट नहीं है, आप तब तक इमिग्रेंट है जब तक आपका घर आपका नहीं है, उसके बाद आप इस कंट्री के हुए हो प्रॉपरली, क्योंकि अब आपको कोई आपकी छत नहीं छीन सकता आपसे इस कंट्री में। तो घर जो है पहला जो अपना प्रिंसिपल हाउस है वो इतना ज्यादा जरूरी होता है हमें। अब उसके बाद क्रेडिट कार्ड के लोन अगर चढ़े हुए हैं या कोई और कार वगैरह का लोन है, उनको उतारने की कोशिश की जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। हमें ये देखना होता है कि कौन सा लोन हमें ज्यादा महंगा पड़ रहा है, हम उसको पहले पे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ सरा जी, सरा जी टाइम खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं बहुत बोल रहा हूँ तो क्योंकि आपने टॉपिक मुझे ऐसा दे दिया जिसमें मेरा ये पैशन है बेसिकली, मैं इस फील्ड में मैं कहूंगा कि माहिर हूँ ये मेरा फील्ड है।
कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आप इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट आपने सिंस मेंशन करी हमको थोड़ा सा डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, तो आप एकदम 30 सेकंड ले लीजिए, जस्ट अपना सर्विसेज का नंबर एक दफा फिर दे दीजिए एंड वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, प्लीज गो अहेड।
जरूर जी, मेरा फोन नंबर है 6472851007, 647-285-1007। सरा जी देखिए इतना कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अब समझ तो आ ही गया होगा सबको कि मैं क्या करता हूँ। तो अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6472851007। थैंक यू वेरी मच सरज।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। वाई मीडिया का नंबर आप नोट कर लीजिए 4164755000। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे एवरीबॉडी।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Ta-da!
The things are back.
सफर हले शुरू होया है
विद मोर फैशन।
ए हमेशा मेरा सपना रहा है कि मैं दूजी लोकेशन खोला।
मोर ऑल्टरेशंस।
मैं बदलावा चाहनी है।
तुसी की बदलावा चाहते हो?
सब कुछ।
एंड मोर ड्रामा दैट विल हैव यू इन स्टिचेस।
काटा ही बहुत है
ना, वो ज्यादा ज्यादा है।
बॉलीवुड न्यू सीजन संडे वॉच फ्री ऑन CBC जैम।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL बिकॉज वी केयर।
की तुसी अपने घर अते ऑटो इंश्योरेंस दे रिन्यूअल करवाना चाहते हो ते तुसी चंगी कीमत भी तलाश रहे हो, तां फिर घबराउण दी लोड़ नहीं। तुसी जाओ ऑल स्टेट एजक एजेंसी दे राजा मुदसर कोल, तुसी एक घर ते दो कारा दी इंश्योरेंस करवा के इना तो $1,775 दी बचत भी कर सकते हो। हुणे संपर्क करो राजा मुदसर नूं 647-290-3773 यानी 647-290-3773।
लो जी स्टेशन साइट हुन विकना शुरू हो गया है। मिल्टन डाउनटाउन विच तुहाडी वखरी ते सोनी रिहायश जेड़ी शुरू हुंदी है 490,490 डॉलर ची ते GTA दा सब तो वधिया मुल है। ए दो चार राली इमारत सेंट्रल पोडियम तानी अंदरूनी ते बाहरली सहूलतां पेश करदी है। मिल्टन गो स्टेशन दे बिल्कुल नाल जुड़िया स्टेशन साइट मिल्टन फ्यूचर मोबिलिटी हब दा नींह पत्थर है जेड़ा तुहानू आराम नाल तुहाडियां मंजिलां तक पहुंचावेगा। GTA दे उज्जवले भविष्य विच अज ही निवेश करो। स्टेशन साइट .ca ते रजिस्टर करो। ब्रैम्पटन सिटीजन अवार्ड दे लई सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने नॉमिनेशंस रजिस्टर करना शुरू कर दितियां ने। ब्रैम्पटन दे शहरी साल 2023 दे सब तो चंगे एथलीट खिडारी वॉलंटियर ते लोकल हीरोज नु नामजद कर सकदे आ। ब्रैम्पटन दी 50वीं सालगिरह दे मौके ते एक स्पेशल कैटेगरी ब्रैम्पटन 50 बनाई गई है जेडी सिर्फ ऐसे साल लई होएगी। इस उज्जवले समय दा हिस्सा बनन लई 16 फरवरी 2024 तक अपनियां नॉमिनेशंस फाइल कर दियो।